रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वात जातं भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए तिनके पद वंदन किए नासत विघ्न अने। नाभाजी महाराज ने 16 भगवान के पार्षदों की वंदना करके अब जो जो भगवान के भक्त हैं उनके विषय में बोलते हैं। हरि बल्लभ सब प्रार्थो जिन चरणों आशा धरी, जितने भगवान के प्रिय भक्त हैं उन सब भक्तों के चरणों में अपना शीश नवा करके और उनकी चरण रेणु को अपने सिर पर रखने की आशा रख करके भगवान की तरफ मैं चलता हूं। भक्तमाल को लिख रहा हूं, मुझे भगवान के प्रेमी भक्त कौन है? सबसे पहले नाम आया कमला, लक्ष्मी जी का कमला गरुड़ जी महाराज, सुनंद आदि षोडश प्रभुपद रति, जिनका वर्णन पहले आ गया वो सुनंद आदि 16 पार्षद, हनुमंत जामवंत सुग्रीव विभीषण शबरी खगपति, ध्रुव उद्धव अम्बरीश विदुर अक्रूर सुदामा, चंद्रहास चित्र केतु ग्राह गज पांडव नामा, कौशारव कुंती वधु पट ऐचत लज्जा हरी। हरि बल्लभ सब प्रार्थो जिन चरण रेणु आशा धरी। भगवान के जितने भक्त हैं ये इन्होंने भगवान के चरणों की रेणु पर बड़ी आशा लगाई थी। सबसे पहले लक्ष्मी जी को ही लीजिए। भागवत में आता है कि जिस लक्ष्मी को ब्रह्मा जी से लेकर के सामान्य कीट पतंग तक के जितने प्राणी हैं सब चाहते हैं, पर लक्ष्मी जी केवल भगवान के चरणों को ही अपने हाथ में रखती है और किसी के पास लक्ष्मी स्थिर नहीं रहती नहीं। ब्रह्मा जी भी चाहते हैं कि मेरे पास लक्ष्मी जी रहे, देवता भी चाहते हैं, मनुष्य चाहते हैं, सब चाहते हैं, परंतु लक्ष्मी जी भगवान के चरणों को नहीं छोड़ती। लक्ष्मी जी जब भगवान के चरणों को दबाती थी तो भगवान बोलते थे और ये दर्द हो रहा है। लक्ष्मी जी सोचती कि इतने भगवान के कोमल चरणों की अपेक्षा हाथ कोमल होता है। अपने लोगों का भी हाथ देख लो और पैर देख लो, पगतली कठोर होती है, कठोर भूमि पर चलने पर और कठोर हो जाती है, हाथ फिर भी कोमल होते हैं। भगवान के चरण और लक्ष्मी जी के हाथ, तब भगवान कहते हैं कि ओहो बड़ा कठोर हाथ है तुम्हारा। तो लक्ष्मी जी ने फिर भगवान से पूछ ही लिया कि मेरे कोमल हाथ आपको इतने कठोर लगते हैं तो फिर आप युद्ध कैसे करते हैं, शस्त्रों को हाथ में कैसे लेते हैं, और बड़े बड़े राक्षसों का कैसे आप संहार करते हैं। तो भगवान ने कहा कि देखो लक्ष्मी जी, आप चरण दबाती है ना तब मेरे चरण कोमल होते हैं, और जब मैं अपने भक्तों के उद्धार के लिए पृथ्वी के कष्ट को दूर करने के लिए जाता हूं तब वहां मेरे ये कोमलता नहीं रहती है। फिर वो कोमलता कहां चली जाती है कि वो कोमलता मेरे हृदय में आ जाती है, कि हृदय तो आपका यूं ही कोमल है तो और कोमल हो जाता है। भक्तों के लिए मेरा हृदय बहुत कोमल हो जाता है। तो लक्ष्मी जी ने कहा किसी अवतार में आप मेरे को भी साथ में ले चलो। भगवान ने कहा कुछ अवतार ऐसे हैं जिनमें पूरा साथ नहीं दूंगा, कुछ अवतार हैं जिसमें बिल्कुल साथ में नहीं रहूंगा, और कुछ अवतार ऐसे होंगे जिनमें तुम्हारे साथ रहूंगा। ऐसे भगवान ने कई अवतार बताए कि महाराज मुझे आप कहीं कहीं क्यों नहीं रखना चाहते कि तुम डर जाओगी मर जाओगी कहीं। अब मैं कभी नृसिंह बनता हूं तो वहां तुम मेरे साथ में लक्ष्मी बनी हुई जचोगी भी नहीं, नहीं, नहीं। तो आपका रूप तो देखना चाहती हूं, नृसिंह रूप। तो क्या हुआ, भगवान जिस समय हिरण्यकश्यप को मारकर सिंहासन पर विराजमान हुए, क्रोध आया हुआ भगवान को, उस समय देवताओं ने कहा लक्ष्मी जी आप जाओ। लक्ष्मी जी नहीं गई, नोपे आए लक्ष्मी, लक्ष्मी जी पास में गई नहीं, दूर खड़ी रही, देखती रही कि मेरे स्वामी का क्रोध, मेरे स्वामी का प्रभाव, मेरे स्वामी का कितना असर होता है प्राणियों पर, वो देखने के लिए छिपके छिपके आए। और नृसिंह अवतार कोई ज्यादा समय ठहरा नहीं, कई अवतार तो बहुत समय तक ठहरते हैं, कई अवतार थोड़ा काम करके चले जाते हैं। परशुराम अवतार भी बड़ा रौद्र अवतार था, बहुत लड़ना झगड़ना, यहां भी लक्ष्मी जी का अवतार सुनते नहीं है। राम अवतार है, कृष्ण अवतार है, कृष्ण अवतार में भी ब्रज को छोड़कर और लीलाओं में अवतार नहीं है। कृष्ण अवतार में विशेष बात यह है कि भगवान की राधिका जी का अवतार भगवान से पहले हुआ था। 11.5 महीना राधिका जी बड़ी थी और भगवान राधिका जी के अवतार लेने के बाद 11.5 महीने के बाद अवतार लिए। कि ऐसा क्यों हुआ, भगवान पहले अवतार लेते और राधिका जी का अवतार बाद में होना चाहिए, यहां पहले अवतार क्यों आ गया। राधिका जी तो माने लक्ष्मी जी तो भगवान के साथ साथ होते हैं, तो आपको बताया था कि राधिका जी हैं, इनको हम लक्ष्मी जी में मान नहीं सकते हैं, ये तो भगवान की एक आह्लादिनी शक्ति, प्रेम की जो वृत्ति है वही राधा बन करके आई है। और वो हम लोगों को ये शिक्षा देती है कि भगवान कब आपके हृदय में आएंगे, पहले भक्ति पैदा होगी तो फिर भगवान आएंगे। बिना भक्ति के भगवान अवतार नहीं लेंगे, बिना भक्ति के आपके हृदय में भगवान प्रकट कैसे होंगे, पहले भक्ति होनी चाहिए। इसलिए राधिका जी ने अवतार लिया हम लोगों को बताने के लिए। भगवान ने भी बताया कि पहले भक्ति करो, उसके बाद मैं उस भक्ति के कारण से स्वतः ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा। ये तो हो गई लक्ष्मी जी की बात। अब गरुड़ जी की बात है। कश्यप जी के कई पत्नियां थी, उनमें कद्रु और विनता ये दो पत्नियां और थी, ये दोनों दक्ष प्रजापति की कन्याएं थी। तो इनकी बात क्या हुई कि कद्रु ने 1000 नागों को जन्म दिया, सर्पों को जन्म दिया, और उनकी जो दूसरी पत्नी थी विनता, उसके दो अंडे हुए। तो विनता ने देखा कि देखो मेरी सौत के तो हजार ये सर्प हो गए, मेरे दो ही अंडे हो गए और वो दोनों अंडे फूटे ही नहीं, उनमें से प्राणी निकले ही नहीं। तब एक दिन विनता को क्रोध आया, देखो इसके ऊपर महाराज जी भी बोलते थे। तो फिर क्या हुआ कि उसने अपने ही अंडे पर यूं ठोकर लगाई, हाथ से यूं क्रोध में आया, तो उसमें से प्राणी निकला। वो ऊपर से तो एकदम साबत था लेकिन पैरों से बड़ा लाचार लंगड़ा हुआ, क्यों ठोकर लग गई। उसने कहा मां ये क्या किया, तुमने क्रोध कर लिया तो मेरा ये सारा पैर टूट गया। अब ये जो दूसरा जो अंडा है इसके साथ ऐसा मत करना कि क्यों, नहीं तो वो भी ऐसा हो जाएगा, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तूने मेरे शरीर पर चोट पहुंचाई, अंडे पर चोट पहुंचाई, मैं तुम्हारा ही तो बेटा था। इसका फल ये होगा कि आप अपनी सौत के 500 वर्षों तक गुलाम रहोगे, दासी बनकर रहोगे। अपने ही पुत्र को, अपने ही अंडे को आपने कष्ट पहुंचाया, उसका फल ये होगा कि आप 500 वर्ष तक दासी रहोगी। अब देखिए आप एक जन्मे हुए अंडे को मारा नहीं, चोट पहुंचाई, उसका फल उस बच्चे ने यह श्राप दिया कि 500 वर्ष तक तुम दासी रहोगी। इससे अनुमान लगा लीजिए, समझ गए होंगे, जो गर्भ में ही बालकों का नाश कर देती है उनकी क्या दशा होगी। ये तो एक अंडे पर क्रोध में ही प्रहार किया, उसका ये नतीजा। उसने पूछा है कि मां मुझे मारा क्यों आपने, मेरा कसूर क्या है, क्यों मारा यू आपने, ठोलेगी क्यों मारी, मैं मेरे हिसाब से पैदा होता हूं, हमारा हिसाब होता है उस हिसाब से पैदा होता हूं। हम सर्पों की तरह थोड़े ही कि एक साथ सर्प तो पैदा होते ही सर्प होते हैं, हम अंडज हैं, अंडों में से पैदा होते हैं, इसलिए हमारे विकास में तनिक समय लगता है। ये तो जन्मजात ही ऐसे ही होते हैं, कुंडली बनाकर फिर बैठ जाते हैं और फिर एक सर्पणी होती है वो खा जाती है उनको, और जो कुंडली बाहर हो जाते हैं वो निकल जाते हैं, बाहर हो गए निकल गए। इसीलिए संत महात्मा भी बोलते हैं कि जो संतों की शरण में आ जाते हैं ना वो तो संसार से पार हो जाते हैं, और जो जगत की शरण में रहते हैं जगत उनको खा जाता है, संसार के अंदर ही उलझे रहते हैं। जैसे सर्पिणी अपने घेरे में आए हुए अपने बच्चों को खा जाती है, पुत्रादीनी सर्पिणी, लेकिन उस घेरे को छोड़ करके बाहर चले जाते हैं, उनको वो नहीं करते। ऐसे ही संसार के घेरे को छोड़ करके अर्थात संसार के कामना आसक्ति ममता लोभ अहंकार इसका घेरा, इसको छोड़ के बाहर चले जाते हैं, संतों की शरण में चले जाते हैं, वो तो पार हो जाते हैं और संसार में उड़ जाते हैं, उनको संसार कहा जाता है। तो कहा इस दूसरे बच्चे को बिल्कुल मत करना कि ठीक है बेटा ध्यान नहीं रहा। थोड़े समय में दूसरा बच्चा हुआ, दूसरा बच्चा हुआ, वो हुआ गरुड़, ये हुए अरुण। अरुण थे पंगु, पैर उनके काम नहीं करते थे, तो ब्रह्मा जी ने उनको कहा कि तुमको सूर्य का रथ चलाना होगा, तुम बड़े बुद्धिमान हो। तो सूर्य का रथ कैसे चलता था, अपने ही घोड़े के पीछे बैठ के लगाम है, ऐसे नहीं चलता है, घोड़े यूं चलते हैं, सारथी वो सूर्य के सन्मुख होता है, सूर्य को पीठ नहीं दिखाता और घोड़े चलते हैं। अब घोड़े यूं चलते हैं, यूं बैठा है सारथी, और सूर्य भगवान यूं बैठे रहते हैं। वो तो सारथी में हो गए। अब गरुड़ जी का जन्म हुआ तो देवताओं ने गरुड़ जी को बड़ा अच्छा तेजस्वी बना दिया। गरुड़ जी बड़े विलक्षण थे। एक बार गरुड़ जी ने अपनी मां से पूछा कि मां, आप अपनी सौत के दासी क्यों हो और आपका ये दासीपना कैसे छूट सकता है? तो विनता नाम की मां थी, उन्होंने कहा कि तुम कद्रू से ही पूछो और कद्रू के बेटों से पूछो। तो गरुड़ जी ने अपनी सौतेली मां से पूछा और अपने भाइयों से पूछा कि आप लोग हम लोगों को दास क्यों बनाते हो? तो कहा कि तुम्हारी मां में और हमारी मां में एक बार लड़ाई हो गई थी। किस बात को लेकर? कि ये उच्चई श्रवा नाम का जो घोड़ा है, इस घोड़े की पूंछ कैसी है? तो तुम्हारी मां ने कहा कि सफेद है, मेरी मां ने कहा कि काली है, पूंछ काली है और थी सफेद। लेकिन मेरी मां ने देखा कि जिसकी बात झूठी होगी वो दासी बनेगी। तो मेरी हमारी मां के अंदर थोड़ा कपट का भाव था, उन्होंने जाकर हमको भेजा कि जाओ तुम उस पूंछ के लिपट जाओ। तो हम जाकर लिपट गए तो पूंछ काली दिखी। तो कद्रू ने कह दिया, हमारी मां ने कह दिया, देखो इसकी पूंछ काली है, तुम हमारी दासी हो जाओ। तुम्हारी मां सीधी सादी भोली भाली उदासी हो गई। तो गरुड़ जी ने कहा कि अब इस दास भाव से कैसे मुक्त हो सकते हैं कि देवताओं के वहां जाकर तुम अमृत का गुटखा हमारे लिए भी ला दो और वो अमृत तुम हमको पिला दो, फिर आप दास भाव से मुक्त हो जाओगे। गरुड़ जी में बड़ा बल था, स्वर्ग में गए, देवताओं को जाकर के कहा कि अमृत देव, क्या करोगे तुम अमृत? हम दास भाव से, तुम दास भाव से मुक्त हो जाओगे, रखें हम दास बन गए तो हम नहीं देते तुमको। गरुड़ जी ने कहा आपके काम आऊंगा, ऐसी बात नहीं है, आज थोड़ा हमारे काम पड़ गया, थोड़ा अमृत चाहिए, नहीं दिया। नहीं दिया तो गरुड़ जी ने युद्ध किया। गरुड़ जी उस को चौंक से उठाना है, अमृत कलश को चौंक से पंजे में ले लिया। भगवान ये लीला देख रहे थे, उन्होंने जाकर के उस अमृत को पिला दिया सर्पों को। सर्पों को पिलाने के बाद जो बाकी बचा वो ले जाकर के उन्होंने वहां रख दिया स्वर्ग में। भगवान बड़े खुश। भगवान ने कहा वाह गरुड़ भा, अमृत तो तुम भी पी सकते थे लेकिन तुम्हारे अंदर अमृत पीने की इच्छा नहीं हुई। कितनी ऊंची तुम्हारी मन की स्थिति है। तुम अपनी मां के और अपने भाई के दासत्व को मिटाने के लिए अमृत सर्पों को पिलाया, तुमने नहीं पिया। मैं बहुत खुश हुआ। जो ऐसे निष्काम भाव से रहते हैं उनको मैं छोड़ नहीं सकता हूं। तो भगवान ने कहा कि तुम अब हमारे पास रहा करो, हम तुम्हें अपना वाहन बनाएंगे। मुझे ऐसे निष्काम की आवश्यकता है, हमको निष्काम पुरुष निष्काम प्राणी मिलते ही नहीं। बड़े खुश हो गए भगवान। फिर गरुड़ जी ने सूर्य के पास जाकर प्रार्थना की कि हे सूर्य भगवान, मुझे आप वेद पढ़ा दो, मुझे ज्ञान करना, मैं ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं। सूर्य भगवान ने देखा कि यदि नहीं बताऊंगा तो इसका बड़ा भाई है, मेरा रथ चलाता है, वो नाराज हो जाएगा। और बताऊं तो ये तो एक मामूली पक्षी है, पक्षी को क्या वेद का ज्ञान दूं, तुच्छ समझा उसको। बाद में ध्यान आया कि अरे तो साक्षात भगवान का वाहन हो गया है, तो कहा कि आ जाओ आ जाओ मैं तुमको सिखा दूंगा। पहले तो मना कर दिया, फिर कि आ जाओ, कहा कि बस अब मैं तपस्या में लग गया हूं। जब कोई ज्ञान के लिए एक बार बताने से इनकार कर देता है तो इसका मतलब है कि हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं है, अतः मैं तपस्या करूंगा। तब सूर्य ने कहा कि अरे गरुड़ का भाव तो और भी तेज है, अपनी गलती मानता है, गलती तो मेरी है और मानता ये अपनी है, इसको अब ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता ही क्या है। सूर्य ने कहा कि तुम कोई चिंता मत करो, तुम्हारा ये भाव ही वेद ज्ञान है। इतना बड़ा भाव पैदा हो जाना कि कोई आदमी दूसरा गलती करता है उसमें अपनी गलती मान ले, ये वेद ज्ञान है, वेद ज्ञान। भगवान ने भी उनको अपने पास में रखा। भगवान ने कहा कि तुमको अब वेद ज्ञान की जरूरत क्या है, पुस्तक पढ़ने की जरूरत क्या है, मनुष्य का अपना स्वभाव सुधर जाता है तो वो जो है अपने आप उसको वेद ज्ञान हो गया। संतों ने कहा है, ठहरी हुई बुद्धि में समता, जहां हमारी अंतःकरण में समता आ गई उसको सारे वेद उपनिषद का ज्ञान हो गया। अनुकूलता में प्रसन्न न होना और प्रतिकूलता में दुखी नहीं होना, ये जिसका स्वभाव हो गया उसको अलग से वेद ज्ञान करने की जरूरत नहीं है। भगवान ने कहा कि तेरे पंखों से वेद की ऋचाएं निकलेंगी, तू चिंता मत कर। इधर गरुड़ जी ने उन सर्पों को अमृत दिया ना, तो सर्पों ने देखा कि हम पी जाएंगे तो अमृत खूट जाएगा, लोभ किया, उन्होंने जाकर के छिपा दिया। कहां छिपाया? ये जो कुश होते हैं ना, कुश घास, उन कुशों के अंदर जाकर के उन्होंने उस अमृत को छिपा दिया, कोई देखेगा नहीं, फिर काम में ले। जैसे कंजूस आदमी अपना धन छिपाता है और ये भावना रखता है कि अभी खर्च कर देंगे तो खूट जाएगा, खूट जाएगा तो कहां से आएगा, फिर आगे कैसे काम चलेगा, इसलिए अभी तो संग्रह कर लो और फिर आगे काम में ले लेंगे। अभी संग्रह कर लो फिर आगे काम में लेंगे। जो ही धन आता है, संग्रही व्यक्ति की पहली वृत्ति संग्रह पर जाती है, लोभी आदमी की संग्रह में जाती है और समय आएगा तो खर्च कर देंगे, ऐसी बात तो बोलता है लेकिन समय आने पर वो खर्च कर सकता नहीं, ताकत नहीं उसकी, लोभ ने उसको कमजोर बना दिया। तो सर्पों ने इतना कमजोर बना दिया कि वो सर्प पी तो सके नहीं और कुशों में ले जाकर छिपा दिया। इधर देवताओं ने देखा कि ठीक हुआ, देवताओं ने जाकर चुपचाप उन कुशों से अमृत ले लिया, अमृत वापस ले गए देवता अपने। तब वो जो सर्प थे, उन सर्पों ने उन कुशों को चाटना चालू किया, चाटने लगा तो वो सर्प चाटने लगे तो कुश के द्वारा उनके जीभ में छेद हो गया, लकीर हो गई। तो सांप के देखो दो जीभ होती है, दो जीभ ऐसे। एक सपेरे ने हमारे सामने सांप को दूध पिलाया था, यूं उसका जबाड़ा दबाया फिर उसको दूध पिलाया, तो दूध पीने में दो जीव यूं ही निकले, दो जीव ये आंखों से देख रहे हैं, वैसे सर्प के दो जीव निकल गए। केकई मां के लिए भी यही बात आती है कि जैसे सर्पणी दो जीव निकालती है ऐसे केकई ने दो वरदान मांगे, ऐसी बात आती है। ये गरुड़ जी सदा भगवान के प्रिय रहे। तो देखो कितनी विशेष बात है कि गरुड़ जी महाराज ने अपने हाथ में आए हुए अमृत का पान नहीं किया, कितने तो निष्काम। सूर्य ने विद्या नहीं दी तो अपना दोष माना कि मेरा कोई दोष है, और सामवेद उनके पंखों से पैदा होने लगा तो भी उनके मन में ज्ञान का अभिमान नहीं, हरदम भगवान के दास होकर के रहते हैं। इसलिए नाभाजी महाराज ने कहा कि ऐसे भक्त हैं जो भगवान के बड़े प्रिय हैं और जिनको भगवान के चरणों की धूली मिलती है, ऐसे भक्तों की चरणों की धूली पर मेरी आशाएं टिकी हुई है। अब उसके बाद हनुमान जी का नंबर आया, हनुमान जी का नाम लिया इन्होंने, हनुमंत जामवंत सुग्रीव विभीषण सबरी खगपति। हनुमान जी की शुरू से उत्पत्ति बताते हैं कि हनुमान जी महाराज थे, ये कुंजर बानर की कन्या थी अंजना, उसके बेटा थे। बताते हैं कि एक पुंजिकस थला नाम की अप्सरा थी, पुंजिकस थला बहुत सुंदर अप्सरा थी, अपने सौंदर्य का उसको बड़ा अभिमान था कि मैं बड़ी सुंदर हूं। एक ऋषि थे बेचारे दुबले पतले बदरू खराब रूप वाले, हंसी उड़ाने लगी ये ऋषि, हंसी उड़ाई गई। उन्होंने कहा कि अरे शरीर भी किसी का सुंदर होता है क्या, और शरीर भी किसी का खराब होता है क्या, सुंदर और असुंदर की पहचान तो प्राणी के स्वभाव से होती है कि ये प्राणी सुंदर है, सुंदर माने इसका स्वभाव बड़ा अच्छा है, ये प्राणी खराब है, खराब का मतलब इसका स्वभाव खराब है। तुम शरीर को सुंदर और शरीर को खराब मानते हो, मानती हो, अप्सरा बनी हुई रहती हो, बड़ी घमंड में जाओ, तुम एक बंदरी के रूप में रहोगी। तो वही पुंजिका स्थला थी, वो अंजनी बन गई, लेकिन स्वर्ग से आए थी तो उसके पास ये शक्ति थी कि चाहे जैसा रूप बना सकती थी, चाहे जैसा। एक बार उसने बहुत सुंदर रूप बना करके थी तो वो बानरी होली में केसरी के साथ विवाह हुआ और मानव रूप धारण करके अपने पर्वत पर ही बैठी हुई थी और चिंतन कर रहे थे, चिंतन कि देखो ये आकाश हमको कितना अच्छा उपदेश देता है कि जैसे आकाश सबके अंदर है ऐसे परमात्मा सब में व्यापक है। कोई भी चीज बनती बिगड़ती है, आकाश ज्यों का त्यों रहता है, ऐसे परमात्मा ज्यों के त्यों रहते हैं। ध्यान परमात्मा, ये वायु है ये बाहर संचरणशील है, खूब हवाएं चलती है, अंदर शरीर के अंदर भी हवा है, तो ये हवा हमको ये कहता है कि संसार में बाहर भी भगवान है और अंदर भी भगवान है। लोग कहते हैं अंदर में भगवान कहाँ है, तो भाई भगवान की बात छोड़ो, अंदर में सांस है कि नहीं, सांस की तरफ ख्याल गया। लोग कहते हैं आज खूब जोर से आंधी चली, आज खूब जोर से ठंडी हवा चली, आज खूब जोर से गर्मी चली, बाहर की हवा पर सब ध्यान देते हैं पर शरीर के अंदर की जो हवा है सांस है उसके ऊपर कोई विचार करता ही नहीं। कितनी बढ़िया कीमती ये हवा है, ये हवा यदि दो तीन मिनट तक हमको नहीं मिले तो हम घबरा करके मर जाए, लेकिन इस हवा की कोई कीमत ही नहीं समझते। रुपया पैसा धन जमीन जायदाद मकान ये हो गया वो हो गया, हाँ अरे अंदर में वायु है इसकी कीमत है, हम तो गरीब आदमी है और हम तो छोटे आदमी है, हम तो अमुक आदमी है, अरे सांस है तो सब कुछ है, सांस नहीं तो कुछ नहीं है। तो देखो भगवान हमको कितना अच्छा उपदेश दिए हो कि भाई मैं अंदर तुम्हारे सांस के समान तुम्हारे अंदर हूँ और बाहर भी वायु के समान मैं बाहर रहता हूँ, अंदर बाहर मैं ही मैं हूँ, क्यों तुम इधर उधर दूसरों को महत्व दे, मेरे को महत्व दे ना, मैं तुम्हारे काम आने वाला हूँ वायु की तरह। ऐसे वही महिमा में डूब गई कौन, अंजना। तो वायु देवता ने विचार किया कि ओहो आज तो ये अमानवी मानवी, अमानवी माने मानव में ऐसी सुंदरता नहीं होती, ऐसी सुंदर ये मानव रूप धारण करने वाली कौन है, जरा इसको देखो तो सही, ऐसी कौन है। पास में आए, वो चुपचाप बैठी हुई थी अंजना माता, तब उनको एहसास हुआ कि कोई मेरे पास आया है, उनको एहसास हुआ, आंख खोल के देख रही कि कौन हो आप, कि तुम मेरा ध्यान कर रहे थे, आपका ध्यान, मैं तो परमेश्वर का ध्यान कर रही थी, आप कौन है, मैं तो पवन देव हूं और पवन देव हूं और तुम्हारे इस ध्यान से मैं बड़ा प्रभावित हुआ हूं और मैं तुम्हें एक पुत्र दूंगा, मेरे संकल्प से तुम्हें एक पुत्र मिलेगा, उससे तुम्हारे सतीत्व पर कोई आंच नहीं आएगी, बल्कि उस पुत्र के द्वारा संसार में बहुत बड़ा काम होगा, वो मेरे समान बलशाली, मेरे समान चलने उड़ने वाला, मेरे समान उसकी गति होगी, बल पराक्रम में मेरे से कम नहीं होगा। तो अंजना ने कहा कि यदि मेरा सतीत्व नष्ट नहीं होता है और ऐसा पुत्र मिलता है तो मैं उसे स्वीकार करती हूं। तो उन्होंने स्वीकार किया, अंजना प्रसन्न हो गई। इसलिए अंजना, इसलिए हनुमान जी को कहते हैं कि सुमीरी पवन सुत पावन नाम, इनको पवन सुत बोलते हैं, कहते हैं इनको पवन सुत के साथ साथ में शंकर सुवन केसरी नंदन, केसरी की, केसरी की तू पत्नी है अंजना। देखो ये दैविक सृष्टियां हैं, इन दैविक दिव्य सृष्टियों के अंदर मानवीय सृष्टि की उपमा नहीं दी जा सकती। हम लोगों का पैदा होना अलग है और ये दिव्य सृष्टियों का पैदा होना अलग लगता है। तो भगवान शंकर से कैसे पुत्र कहलाते हैं, तो उसमें ये बात बताते हैं कि ब्रह्मलोक की अप्सराओं में एक सुवर्चला नाम की अप्सरा थी और ब्रह्मा जी ने उसको श्राप दिया कि तू गिद्धी हो जा, गिद्धी 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 हो जा। तो कहा अच्छी बात है, गिद्धी हो जाऊंगा, ये घबराना नहीं, तेरे द्वारा बहुत अच्छा काम करवाना है, तेरी मुक्ति का एक उपाय बताता हूं। ब्रह्मा जी ने कहा कि क्या, हे त्रेता युग में जाकर के अयोध्या में दशरथ जी नाम के एक राजा होंगे, दशरथ जी के कोई लड़का नहीं होगा तो वहां अग्नि देवता एक बार यज्ञ के अंदर से चरु लेकर प्रकट होंगे, तुम वहां अयोध्या में उस चरु पर निगाह रखना, उस चरु को लेकर के अग्निदेव कौशल्या को और सुमित्रा को अपना अपना हिस्सा दे देंगे और जब केकई को हिस्सा देवे, केकई के हाथ में वो चरु आए, वो चरु लेकर के तुम उड़ जाना, उस चरु को लेकर के उड़ने के बाद फिर तुम जो है जाना, जहां तक ले जा सको वहां तक ले जाना और जहां वो छूट जाए तो उसको छोड़ देना, जो ही वो चरु तुम्हारे हाथ से छूटेगा त्यों ही तुम अपने धाम में आ जाओ, ब्रह्मलोक में आ जाओगे। वो बिचारी अयोध्या चली गई, अयोध्या में करते करते इक्ष्वाकु का राज्य आया। अब इक्ष्वाकु का राजा फिर उसका राजा फिर उसका बेटा करते 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 दशरथ जी का नंबर आया। राजगद्दी पर बैठ बैठ अब राज्य अब नंबर आएगा मेरा भी उद्धार होने का। फिर वो यज्ञ हुआ और वो चरु प्रकट हुई, अग्नि ले चरु लेकर के प्रकट हुआ और सबको दिया। उस समय वो उड़ करके गई आकाश में। और इधर क्या हुआ कि अंजना थी वो 7000 वर्षों से अपने पुत्र की प्रतीक्षा के लिए भगवान शंकर से प्रार्थना कर रही थी, भगवान शंकर का जाप कर रही थी। कौन? अंजना माता। इतने लंबे समय में लोग कहते हैं इतने जीते कैसे थे? नारद जी के हजारों वर्ष, कश्यप जी के हजारों वर्ष, के लाखों वर्ष जीते कैसे थे? आज अचंभा करते हैं जीते। अब इसका कारण बताते हैं। नारद जी किसके बेटा है? ब्रह्मा जी के। तो ब्रह्मा जी के बेटा नारद जी है तो ब्रह्मा जी की आयु कितनी होती है? 1000 चतुर्युगी का दिन, 1000 चतुर्युगी की रात। उस रात और दिन से महीने बनाओ, वर्ष बनाओ, 100 वर्ष तक ब्रह्मा जी का दिन होता है। तो कितने लाखों वर्ष उसको ब्रह्मा जी के 1000 चतुर्युगी होती है। 1000 चतुर्युगी, 1000 बार सतयुग, 1000 बार त्रेतायुग, 1000 बार द्वापर युग, 1000 बार कलयुग, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। तो ब्रह्मा जी के बेटों का भी यही कालमान है। ब्रह्मा जी का कालमान और उनके बेटों का कालमान भी अलग अलग थोड़ी होगा, एक ही होगा। इसलिए इनकी आयु बहुत लंबी है। तो भगवान शंकर आए। भगवान शंकर ने कहा कि देखो अंजना जी, मेरा 11वां जो रौद्र रूप होगा ना, वो तुम्हारे यहां पुत्र बनकर आएगा और स्वयं पवन देव तुमको देके जाएंगे प्रसाद रूप में। तुम उसकी चिंता मत करो। हाँ ठीक बात है, बड़े प्रसन्न हो गए अंजना जी। इधर वो छूटा कलशा छूटा, खीर का पात्र छूटा, तो पवन देव ने लेकर के सीधा अंजना जी को दे दिया कि इसमें जो खीर है इसको आप चाट जाओ। तो वो जो उन्होंने चाट लिया अंजना माता ने, और उससे रुद्रावतार हनुमान जी का प्राकट्य हुआ। हनुमान जी के प्रकट होने का दिन कौन सा है? एक तो मंगलवार तो सभी जानते हैं, मंगलवार एक कातिवदी 14 मंगलवार, ये हनुमान जी का प्राकट्य दिन है। कातिवदी 14 मंगलवार, स्वाति नक्षत्र, मेष लग्न, प्राय लोगों को पता नहीं है, ये है खास हनुमान जी के जन्म का दिन। हनुमान जी का जन्म हो गया। बड़ी विचित्र कथाएं आपने सुनी नहीं होगी, ऐसी कथाएं हमने भी नहीं सुनी। छोटे से थे हनुमान जी, भूख लगी आई, बच्चा कहता है माँ को कि माँ मुझे भूख लगी आई, भूख लगी आई। माँ ने कहा बेटा अभी फल लाती हूँ, देरी हो गई। ये तो सभी जानते हैं। हनुमान जी गए सूरज के पास, सूरज तक पहुंच गए, लाल लाल देखा ना फल तो वो रहा, माँ कहाँ जा रही? सुर ऐसे पवन देवता ने देखा कि अरे बच्चा है सूर्य के पास जा रहा है, कहीं जल न जाए। तो पवन ने वहां पर ठंडी ठंडी हवा की, अब जड़े कैसे? देवताओं में हाहाकार मच गया, देवताओं में हाहाकार मच गया। और इधर राहु था, उस दिन सूर्य ग्रहण था, तो राहु ने जाकर के देवताओं से कहा देखो 15 दिन में एक बार मैं भोजन करता हूं, अमावस्या के दिन और पूर्णिमा के दिन। पूर्णिमा के दिन मैं चंद्रमा को लेता हूं और अमावस्या के दिन मैं सूर्य को लेता हूं। देखो एक बात बताएं, प्रत्येक अमावस्या को ग्रहण होता है और प्रत्येक पूर्णिमा को ग्रहण होता है। अपने को दिखे न दिखे, बहुत लंबी चौड़ी सृष्टि है, पर राहु जो है ना ये पितर है, इसलिए 15 दिन में वो सूर्य को और 15 दिन में ये इनको खाता है। और 15 दिन का एक दिन माना गया है पितरों का, देवताओं के यहां हमारे 60 दिन का एक दिन माना जाता है। तो वो राहु आया, राहु सूर्य को पकड़ने के लिए आया, और इतने में हनुमान जी भी वहां आए तो राहु डर गया, डर करके और इंद्र के पास गया। ए इंद्र, क्या हो रहा है, देखो एक राहु और पहुंच गया मेरा भोजन करने के लिए। ऐसा कैसे हो गया? जितने और देवताओं ने कहा कि जी आज तो सूर्य को पकड़ने के लिए जाने कौन एक छोटा सा बंदराकृति में कौन पहुंच गया। तो हाथी पर चढ़ करके अपने हाथ में वज्र लेकर के और ये इंद्र आया, राहु आगे आगे, इंद्र पीछे पीछे। तो अब ये हनुमान जी जाकर के सूर्य के पास गए, इतने में राहु को देखा तो सूर्य को छोड़ दिया, राहु को खाने के लिए दौड़े। और राहु देखा कि मेरे घर में, राहु को दौड़ने लगा तो इंद्र को पकड़ लिया कि इतने फल लगे हुए हैं, माँ इधर उधर यही जा रही है। इंद्र ने देखा कि अब ये मेरे को जो है ये गड़बड़ कर देगा। तब इंद्र ने उनके ठोड़ी मारी, वज्र की चोट पहुंचाई, तो वो बेचारे नीचे गिर गए। नीचे गिरते ही वायु देवता को क्रोध आया कि इंद्र को पता है कि मेरा पुत्र है और फिर भी ये इसके ऊपर शस्त्र का प्रहार किया है, अपने बच्चे को संभाल लिया, संभाल करके गुफा में रख दिया। और वायु देवता रूस करके बैठ गए, वायु ने अपने सबसे सांस रोक लिए, ले सांस अब। ब्रह्मा आदि सब घबराए, आकर के वायु देवता के पास आए। वायु देवता ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और सारे देवताओं को भी नमस्कार किया। ब्रह्मा जी ने कहा कि लाओ तुम्हारा पुत्र का है, ये रहा। ब्रह्मा जी ने सिर पर हाथ फेरा, सब देवताओं ने गोद में लिया, कहा कि तुम्हारे पुत्र को हम जो है स्वस्थ बना रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा स्वस्थ स्वस्थ की बाप स्वस्थ से पार नहीं पड़ेगी, इसको वरदान दो बच्चे। तब इंद्र ने वरदान दिया कि मेरे शस्त्र का प्रभाव अब इस पर नहीं पड़ेगा, कोई चाहे कितना ही इंद्रास्त्र छोड़ दे। अग्नि ने वरदान दिया, महेश्वर ने वरदान दिया, वरुण ने दिया, कुबेर ने दिया, सब ने अपने अपने वज्र से उनको अपने अपने हिसाब से उनको वरदान दिया। इंद्र ने कहा कि तेरा ये हनु 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 कहते ठोड़ी को, ये ठोड़ी तेरी बाकी हो गई ना तो लोग तुझे हनुमान कहेंगे और मेरा अस्त्र अब तुम्हारे पर नहीं चलेगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि ब्रह्मास्त्र से बढ़कर तो कोई अस्त्र है ही नहीं संसार में, ब्रह्मास्त्र तेरे पर भी नहीं चलेगा। मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र चलाया ना, ब्रह्मास्त्र से ही जाना, उन्होंने जान तो लिया कि ये ब्रह्मास्त्र है, मेरे पर लग नहीं सकता है, पर मेरे को तो रावण के पास जाना है और ब्रह्मास्त्र का सम्मान करना है, लोगों को क्यों दिखाऊं कि मेरे पर ब्रह्मास्त्र नहीं लगना। वो चुपचाप बंद गए हनुमान जी जान करके, यद्यपि बंद नहीं सकते थे, तो सबसे उनको जो है वरदान मिल गया। ब्रह्मा जी ने कहा कि अब देखो एक वरदान मैं इसको देता हूं, इसको कोई कहीं रोक नहीं सकता, किसी पर्वत के अंदर रुक नहीं सकता, कभी आकाश में रुक नहीं सकता, ये जल के अंदर रुक नहीं सकता, चाहे जैसा रूप बना सकता है, छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, सब प्रकार का रूप हो सकता है, बड़ा यशस्वी होगा। अब हनुमान जी महाराज एक तो बच्चा ही चंचल, फिर बंदर, और हनुमान जी को इतने वरदान मिल गए, तो हनुमान जी बहुत चंचलता करते थे। कभी किसी ऋषि महर्षि के बगीचों में चले जाते, खूब वहां फल खाना, तोड़ना फोड़ना, ये करना वो करना, उनके रखे हुए पात्रों को फेंक देना, उनके कपड़े उन कपड़ों को पकड़ पकड़ कर फाड़ करके फेंक देना, ये हनुमान जी खूब करते। तो एक बार ऋषियों ने कहा अब क्या करें इसका, इससे काम तो बहुत लेना है, पर ये काम तो करेगा तो करेगा, पर ये तो अभी तो परेशान कर रहा है।
ए बंदर क्या करता है, हम तेरे को साथ देते हैं कि तू अपने बल पर उसको भूल जाएगा, कोई याद दिलाएगा तभी तेरे याद आएगा, नहीं कि तू अपने बल पर उसको भूल जाएगा। चला जाए एकदम हनुमान जी हो गए नम्र, नम्र होकर के घूमने लगे। तब राम काज लगी तब अवतारा, तो सुनते ही वही ऊपर अवतारा। जामवन जी ने उनको जोश दिलाया कि अरे तेरा अवतार तो राम जी के काम के लिए हुआ है, तब सुनते ही वही ऊपर अवतारा। ऐसे हनुमान जी की बात है। अब हनुमान जी महाराज बड़े हो गए, बड़े होने के बाद में विद्या अध्ययन होना चाहिए। माता पिता के चरणों में प्रणाम करके और कहा कि महाराज पिताजी मैं अब कहां पढ़ूं, मुझे विद्या अध्ययन चाहिए। तो कहा कि सूर्य है सबसे बड़े विद्वान, जितने वेद है वो सूर्य के प्रकाश में पढ़े जाते हैं, इसलिए सूर्य के पास जाओ। तो सूर्य के पास गए। सूर्य ने कहा हनुमान मैं तेरे को कैसे पढ़ाऊं, क्योंकि एक मुहूर्त में मैं 34,800 योजन इतना दूर जाता हूं। योजन होता है चार चौगुना कोस से चौगुना, चार कोस का एक योजन होता है, तो इतना एक मुहूर्त में पार करता हूं मैं। मेरे पास ठहरने का समय कहां है? कोई गुरु मुख से तुझे पढ़ना हो एक जगह बैठे, फिर गुरु जी पुस्तक पढ़ाए, फिर तुम उसके ऊपर मनन करो। मैं तो यूं चलता रहता हूं, कैसे अध्ययन करोगे, कैसे अध्ययन कराऊंगा। हनुमान जी ने कहा कोई बात नहीं, मैं आपके मुख की तरफ बैठा रहूंगा, आप बोलते जाएंगे मैं सुनता जाऊंगा, आप बोलते जाएंगे सुनता जाऊंगा, मेरी गति तो रुकने वाली है ही नहीं। सूर्य को याद आएगा अरे हाँ इसकी गति रुकने वाली नहीं है, और इसको मना करना अच्छा भी नहीं है। फिर उन्होंने उनको शास्त्र का ज्ञान कराया और कहा कि देखो तुम्हारे अंदर तो सारे शास्त्र बैठे हुए हैं, प्रकट हो जाए, तुम्हारे सारा ज्ञान तुम्हारे अंदर से प्रकट हो जाएगा। और देखो अब मेरे ही वंश में भगवान का अवतार होगा, और मेरे दिए हुए ज्ञान से तुम भगवान की खूब अच्छे ढंग से आराधना करना। हनुमान जी ने कहा कि गुरु दक्षिणा ले, कोई गुरु दक्षिणा दे रहे हम आपको, गुरु दक्षिणा ले। तो गुरु दक्षिणा में कहा कि देखो एक सुग्रीव नाम का बानर है, सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत के वहां रहता है, किष्किंधा में रहता है, किष्किंधा ऋषिमुख पास पास में ही है। तुम ऐसा करो कि सुग्रीव की रक्षा करना, बस सुग्रीव के साथ में रहना, यही मेरी गुरु दक्षिणा है। अच्छी बात, वेदाध्ययन भी हो गया, इधर भगवान का अवतार हो गया, भगवान का मुंह बड़ा उदास रहे, हनुमान की याद आए, हनुमान की याद आए, तो अब देखो अब भगवान याद करे और भक्त है वो कहीं रह सकता है क्या। हनुमान जी छलांग लगाते 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 अयोध्या आ गए। अयोध्या में एक मदारी ने उनको पकड़ लिया, भगवान ने उस मदारी को देख लिया। अब उस मदारी को बुला करके अपने पैसा वैसा दे करके हनुमान जी को यहीं रख लिया अयोध्या के महल में। अब राम जी और हनुमान जी खूब खेले, आपस की गहरी गहरी बातें कौन समझे दूसरा, खूब बड़े प्रसन्न हो गए। अब ये देख करके विश्वामित्र जी आए, विश्वामित्र जी आए, तब भगवान ने कहा कि देखो अब अपना मिलना किष्किंधा में ही होगा, और जगह मिलना नहीं होगा, क्योंकि सीता के वियोग में ही अभी मिलना हुआ है, सीता नहीं मिली, अभी मिलना हो गया, और अब मिलना होगा तो वो भी सीता के बिना मिलना होगा, क्योंकि विश्वामित्र जी के साथ जा रहा हूँ, सीता के साथ विवाह होगा, फिर वनवास जाएंगे, सीता मेरे साथ रहेगी। जब तक सीता साथ रहेगी तब तक तेरा मेरा अब मिलना नहीं होगा, और जब सीता का हरण हो जाएगा तब तेरा संसार में यश विस्तार करने के लिए तेरा सानिध्य प्राप्त करेंगे। अब तुम चले जाओ। चले गए, इधर विश्वामित्र जी चले गए राम जी को लेकर के, और उसके बाद किष्कंधा में हनुमान जी से मिले। हनुमान जी वहां पर बटुक रूप बना करके आए थे, कोई कहते ब्राह्मण बनकर गए, कहा तो बटुक के लिए अपने बोलते हैं कि ब्राह्मण बनकर के आए सीता जी, रामचरितमानस में ब्राह्मण बनकर, और आकर के जो राम जी से बातें की तो राम जी कुछ नहीं बोले, सुनते रहे, ऐसी बढ़िया सुंदर संस्कृत बोले, एक शब्द भी गलत नहीं। तो व्याकरणम अधीतम अनेन, लक्ष्मण इसने व्याकरण का अध्ययन किया है, न किंचित अपशब्दितम, इसने जरा सी कहीं शब्दों में गलती नहीं की है, ऐसी बातें हुई है, खूब बढ़िया बातें हुई। और फिर जो है हनुमान जी महाराज सुग्रीव से मित्रता कराते हैं, नहीं तो हनुमान जी कह ही सकते थे कि महाराज यदि ऐसा करना है तो आप सुग्रीव का बड़ा भाई बाली है, बाली से मित्रता करो, बाली की नहीं सुग्रीव से मित्रता करवाई, क्योंकि सूर्य भगवान को सुग्रीव की रक्षा गुरुदक्षिणा में दी हुई है ना, इसलिए। फिर हनुमान जी जो है सब प्रकार के पराक्रम किए, लक्ष्मण जी के भी काम आए, सब हुआ। एक दिन की बात है, जब रावण के साथ में युद्ध हो रहा था ना, उस वक्त की बात है ये। देखो आपने नहीं सुनी होगी, या जिन्होंने सुनी होगी कम लोगों को प्रसिद्ध है, कथा। युद्ध चल रहा, रात्रि में विश्राम कर रहे थे, रात्रि में नियम था कि हनुमान है वो राम जी की पूर्ण रूप से रक्षा करेंगे, बाकी कोई सो जाओ हनुमान जी का कोई चिंता नहीं, मैं इतना नींद का अधीन नहीं हूं, हनुमान जी जगे रहते सेवा करते थे। तो एक अहिरावण था, वो अहिरावण विभीषण का वेश बनाकर आया है, विभीषण का वेश बनाकर आकर राम और लक्ष्मण को ले जाने लगा। हनुमान जी दूर से देख रहे थे, उन्होंने देखा कि शायद विभीषण जी उठे होंगे, कोई काम से ले जाते होंगे, विभीषण जी ऊपर कौन अविश्वास करेगा। फिर हनुमान जी तो स्वयं ही विभीषण को शिक्षा दिए हैं, विभीषण के गुरु है देखा जाए हनुमान जी, इसलिए अपने शिष्य पर तो कौन अविश्वास करेगा। हनुमान जी बैठे रहे और वो विभीषण का वेश बना करके अहिरावण राम लक्ष्मण को पताल में ले गया। हनुमान जी ने कहा विभीषण लेकर, सुबह है प्रातःकाल विभीषण आया और कहने लगा, हनुमान राम लक्ष्मण कहां गए हैं, आप ही तो ले गए थे, मैं कहां ले गया, अरे आप ले गए थे रात्रि में, मैं देख रहा था। हनुमान कोई माया है, कोई माया, मेरा स्वरूप बनाकर कोई माया आई है, कोई नहीं था, मैं था ही नहीं। तो फिर ये कहां कौन ले जा सकता है। विभीषण ने ध्यान लगाया कि राक्षस राज रावण की कोई माया है, ध्यान लगा कर, अरे अही रावण रहता, अही रावण पृथ्वी के अंदर रहता है, पताल में, वहां ले गया। और अब अपना युद्ध तो हरा हुआ समझ लीजिए। हनुमान जी बड़े व्याकुल हो गए, इतना परिश्रम किया, और यदि सीता जी नहीं मिली और राम जी लक्ष्मण जी दोनों ही चले गए तो फिर युद्ध किस बात का। कहा कि विभीषण ये पताल का मार्ग कौन सा है, क्योंकि पताल बहुत विशाल, कौन से मार्ग से जाए। हनुमान तुम अपने आप नीचे जाने के बाद पताल को पहचान लोगे, समुद्र के अंदर से गए हनुमान जी, रोक टोक तो थी नहीं, वरुण देवता ने भी उनको यही आशीर्वाद दिया था, वरदान दिया था कि तेरी जल के अंदर भी वही गई। सर हनुमान जी चले गए पताल में, गए पताल में, पताल में उदार मुख्य दरवाजे पर देखा तो हनुमान जी के जैसा का जैसा एक वानर वहां पर रक्षा करता है। हनुमान जी ने देखा कि मेरे समान बल वाला, मेरे समान आकृति वाला, मेरे समान ही आवाज वाला ये कौन बंदर है। हनुमान जी ने जाकर पूछा, कौन हो तुम? उसने पूछा, आप कौन है? मैं पूछता हूं, तुम कौन हो? तो उसने कहा, मैं आपसे पूछता हूं, आप कौन है? तू मुझसे पूछने की हिम्मत करता है? कभी तूने हनुमान का नाम सुना? आप हनुमान जी हैं? हनुमान जी क्यों, क्या हो गया? नहीं 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 नहीं, आप हनुमान जी नहीं है, आप तो कोई मायावी है, मुझे बुलाना चाहते हैं कि मैं तेरे को क्यों बुलाऊं? कौन है तुझे तेरे को बुलाना पड़े? मैं हनुमान का पुत्र मकरत भेजू। हनुमान जी का मेरा पुत्र, मेरे पुत्र होने का प्रश्न ही नहीं है। मैं तो राम की सेवा में रहता हूं, मेरा तो एक ही शरीर है जो राम जी के चरणों में रख रखा है, और कोई जो है मेरे बेटा नहीं, कोई मेरे पत्नी नहीं, कोई परिवार ही नहीं। नहीं नहीं, मैं आपका, आप हनुमान जी हैं तो मैं आपका पुत्र हूं। तो अच्छा, मेरा पुत्र है तो तेरी उत्पत्ति कैसे हुई बता? कि महाराज, जिस समय आप लंका को जला रहे थे उस समय उसकी गर्मी से आपके पसीना पसीना हो गया था, और वो पसीना की बूंद समुद्र में गिरी, समुद्र में एक मगरमच्छी ने उस पसीने को निगल लिया, उस पसीने से मेरी उत्पत्ति हुई। अच्छा अच्छा, इसलिए मेरा नाम मकरंद ध्वज है। अई रावण का है तो वो तो अंदर है, तो मैं जाकर राम लक्ष्मण को लेके आऊंगा। मकर ध्वज ने कहा, देखो पिताजी, मैं यहां किसी की सेवा में हूं, मैं अपने जीते जी या अपने बल बाहुबल के रहते हुए तो मैं आपको जाने नहीं दूंगा। अरे, एक तरफ तू मुझे अपना बाप मानता है और दूसरी तरफ तू अपने स्वामी का भक्त बना फिरता है। मैं कहूं वैसा नहीं करना, ऐसा तो नहीं हुआ, मैं अपने स्वामी को धोखा तो नहीं दे सकता, आपका पुत्र हूं ना। हनुमान जी अंदर से तो बहुत प्रसन्न हुए, ऊपर से कहा, देख जाने तेरा बाप है, तुझे आज्ञा देता है। बाप तो आज्ञा दे सकता है, धर्म आज्ञा नहीं दे सकता। धर्म नहीं है, मेरे पर विश्वास किया है उसने। हनुमान जी ने कहा कि तो फिर युद्ध करना पड़ेगा, तो करना पड़ेगा, तो करना पड़ेगा। तो हनुमान जी ने उसके दो चार मुक्के लगाए, वो बेहोश हो गया, फिर अंदर गया। अंदर गया तो उधर वो अहि रावण, राम और लक्ष्मण को देवी के मंदिर के सामने बलि का जो स्थान होता है वहां पर बैठा दिया, और तलवार लेके बोलता है, कर ले अपने इष्ट देव का स्मरण, अब तुम एक तलवार के वार से एक साथ दोनों कटने वाले हो, इष्ट देव का स्मरण करो। राम जी ने कहा कि अच्छा, ये अंतिम स्मरण करने का, हाँ स्मरण करने का समय। राम जी ने यूं देख दिया, हनुमान जी दिखे आए वहां, और हनुमान जी लपक करके उसकी तलवार खोस करके और अहि रावण को और वहां के जितने सैनिक थे सबको मार करके तत्काल राम लक्ष्मण को लेकर युद्ध भूमि में आ गए। किसी को भी पता नहीं चला क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तब जो है जय हनुमान का सब लोग नारा लगाने लगे, खूब हनुमान जी पर प्रसन्न हो गए, युद्ध जीत लिए। युद्ध जीतने के बाद में विभीषण ने क्या किया, अपनी एक माला थी क्षीर सागर के समुद्र मंथन से निकली हुई माला थी, वो माला लेकर के और उसने उसके पास थी, वो ले जाकर राम जी को भेंट कर दी, महाराज ये माला। अब भेंट तो कर दी, लेकिन उसके मन में आया कि राम जी मुझे वापस दे दे तो बड़ा अच्छा था। सुग्रीव ने देखा ये माला मुझे दे दे तो अच्छा है, मैं भी तो एक राजा हूं। किष्कंधा का राजा मुझे दे दे प्रसाद। नल और नील ने देखा ये यदि हम पुल नहीं बनाते तो बंदर की सेना ही नहीं आती, हमको दे दे तो बड़ा अच्छा। सबके मन में इच्छा थी हमको दे दे हमको दे दे हमको दे दे हमको दे दे। एक हनुमान जी थे उनके मन में कोई इच्छा नहीं थी। हनुमान जी के मन में किसी प्रकार इच्छा नहीं कि हमको दे दे। हनुमान जी महाराज के भाव से गदगद हो गए राम जी। पर राम जी ने देखा कि यदि हनुमान को दे दूंगा तो लोग देखेंगे कि पक्षपात हो गया, हमने भी तो सहयोग तो उतना ही किया था। काम ऐसा करना चाहिए जिसे कोई नाराज न हो। तो राम जी ने उस माला को लेकर कई देर तक सोच करके कहा सीते तुम बहुत कष्ट पाई, तुम रावण के मैं यहां रह करके बहुत मेरे वियोग में कष्ट पाई हो ना, उसके लिए हम तुमको ये क्षीर सागर का दुर्लभ मणियों का हार तुम्हें ही देते हैं। सीता जी को दे दिया, सीता जी को दे दिया, सारे बानर खुश हो गए। सबके मन में संतोष हो गया कि चलो सीता जी को दिया है और तो कोई बात नहीं। सीता जी को लेते ही सीता जी देखने लगे, सीता जी देखे राम जी ने पूछा किसको देख रही हो, क्या करना है? ये माला मैं किसी को देना चाहती हूं, किसको देना चाहती कि जिसने मुझे सबसे पहले हर्षित किया था, जिसने मुझे सबसे पहले दुख से छुटकारा दिलाया था, जिसने मुझे सबसे पहले आपकी कथा सुनाई थी और जिसने सबके अंत में आकर के आपकी विजय की कथा सुनाकर आपके चरणों में उपस्थित किया था, उस हनुमान को हमें देना चाहते हैं। हनुमान जी बेचारे पीछे जब कर रहे थे भगवान राम जी का हनुमान हाँ वो तो तुम्हारी माँ क्या बोलती है, माँ को प्रणाम किया, क्या है माँ? अरे ये ले तेरे को देना चाहती थी। हनुमान जी ने लिया लेकर के कहा अच्छी बात है माँ आपका प्रसाद है परंतु मैं इसको देखूंगा कि क्या देखूंगा कुछ इसमें। तोड़ा देखा पहली बात तो मणि टूट गई और वो वज्रदंत है साहब टूट गई, टूटी देखा फेंक दिया, देखा फेंक दिया। विभीषण के लाले पड़ रही, अरे इतनी बढ़िया माला मेरे को देते तो मैं मेरे राजघराने में रखता, तिजोरी में रखता, क्षीर सागर के समुद्र मंथन से निकली हुई मोतियों की माला कितनी दुर्लभ है, अब दोबारा कब क्षीर सागर का मंथन और कब ये निकले ऐसी मणियों की माला, और ये तोड़े जा रहा है फेंके जा रहा है, तोड़े जा रहा है फेंके जा रहा है। विभीषण से रहा नहीं गया, विभीषण ने आगे क्या आप हनुमान जी बंदरों जैसी चंचलता करते हो, क्या हुआ विभीषण से? अब देखिए कोई बात होती है इतनी बहुमूल्य मणियां है इसको आप फेंकते हो, आग फेंकने का रहस्य क्या है? देखो जी विभीषण जी इसके अंदर राम नाम देख रहा हूं, यदि इसमें राम है तो ये बहुमूल्य मणि है और राम नहीं है तो कुछ नहीं, राम नहीं तो कुछ नहीं, पत्थर से भी गरीब नहीं थी, पत्थर के काम तो आए ये कुछ भी काम नहीं आया। ऐसे करके बहुत रत्नों की हनुमान जी महाराज ने उस समय निंदा की, लोगों को लड़ाने में ये काम, लोभ इनसे बढ़ता है, कलह इनसे बढ़ता है, ऐसा धन किस काम का, यदि इसमें राम राम हो तो देखो इसका तमाशा कितना बहुमूल्य, हीरा होके कितने ही हो जाते हैं, इसके मूल्य कोई चुका नहीं सकता, बड़ी महिमा का। तो क्या तेरे अंदर राम राम है क्या? चमड़े के अंदर राम राम है तेरा? तू भी तो रख रखा है, फाड़ के दिखाई अंदर लिखा होता राम राम लिखा होता। सब लोग चुप हो गए, कोई तो कहते हैं सीताराम को यूं बैठे हुए सिंहासन पर दिखाया, कोई कहते हैं राम नाम दिखाया, अर्थात जो राम के नाम से जुड़ा हुआ होता है
वही वास्तव में हनुमान जी की दृष्टि में ग्राह्य है, बाकी और कोई नहीं।
समय हो गया, हनुमान जी की अभी बहुत कथाएं बाकी है और कल मंगलवार है, हनुमान जी का चरित्र तो अभी बहुत बाकी है। हनुमान जी के चरित्र को बड़े कई बातें इसमें नई 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 आए हैं। अर्जुन और हनुमान मिलेंगे, बड़ी विचित्र बातें होंगी। हनुमान और भीम तो मिले ही तो महाभारत में आता है, अर्जुन और हनुमान मिलकर के क्या क्या बातें करेंगे, ये बहुत सी विचित्र बातें हैं। अब वो आज समय हो गया, अब कल कथा चलेगी हनुमान जी।
जय सीताराम सीताराम सी